सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा।
याद आ गया मुझे, बहुत अच्छा गीत था ना, प्यार में मगन करने वाला। कल बाबा कैसा लगा है? संकल्प किस किस को उठे? सबको उठे, सबको उठे। आज सवेर से जितने फोन आए वो यही थे, टीचर्स बहनों के फोन, स्टूडेंट्स को क्या बताएं, बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं एक बात बहुत दिन से कहता आता हूँ, बहुत दिन से माना 6 मास से, बात तो खराब है पर जाननी चाहिए सबको, वो ये हेलो तो संगम युग को बाबा को समाप्त भी तो करना है, और बाबा का पाठ तो पीछे जा ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, समाप्ति की ओर जा रहा है। और ब्राह्मण परिवार को भी एक अच्छी परीक्षा देनी पड़ेगी, पढ़ाया है भगवान ने, इतनी पालना दी है तो उसकी परीक्षा भी तो देनी चाहिए या नहीं है? या नहीं? और मुख्य रूप से परीक्षा होगी निश्चय और संशय की, इसके लिए हमें तैयार करना है स्वयं को। मुझे आज बहुतों के फोन सुन के एक बात याद आ रही थी, साकार के ही महावाक्य हैं, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। बहुत गुह्य महावाक्य है ये, साकार में ही बाबा ने बोला था, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। तो बाबा किस तरह कार्य करता है उसको जानना काफी सूक्ष्म होता जाएगा, इसलिए संशय न उठा के, बाबा तो आया ही लेकिन आवाज स्थूल थी, कई बार लोग सोचे गुलजार भी बोल रही है, बाबा बोल रहा है, नेचुरल है, हम सब ने इतना लंबा समय अव्यक्त आवाज सुनी है, उसका सुख मिला। वही चर्चा हो रही को आसपास वाले शांति से बैठने नहीं दे रहे थे, ये क्या हो रहा है, अरे भैया सुन लो बाबा तो आया ही है। मुझे याद आ रहा था, संत ज्ञानेश्वर को जब पंडित लोग तंग कर रहे थे, महाराष्ट्र के कौन कौन बैठे हैं? सुनी होगी आपने कहानी, तो पाटन में जब वो गए पंडितों के पास, पंडितों ने कहा अगर कोई शक्ति है तो ये बैल जा रहा है, इससे वेद मंत्र उच्चारण करके दिखाओ। संत ज्ञानेश्वर तो ज्ञानेश्वर खड़ा हुआ और बैल वेद मंत्र बोलने लगे। यहाँ से उसकी जय जयकार प्रारंभ हुई। कैसे हुआ आप लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, ये सिद्धियां हैं। मन में बोल रहा है संत ज्ञानेश्वर, लेकिन उसने ब्रेन कंट्रोल कर दिया है बैल का, बुलवा उससे रहा, मन उसका चल रहा है, स्थूल आवाज बैल से आ रही है, ये सिद्धियां हैं। तो जब मनुष्य संत ऐसा कर सकते हैं तो भगवान क्या करेगा है? कुछ भी करने में समर्थ है वो, लेकिन अब उसे इस अव्यक्त पार्ट को भी समाप्त करना है, क्योंकि बहुत पालना कर ली। आप सब देख रहे हैं, ज्ञान तो होता नहीं है मुरलियों में ज्यादा, प्यार प्यार बस, क्योंकि बहुत गुही है ज्ञान। बाबा देख चुके, हम सुन चुके हैं 3 साल से पहले तक, अति गुही है ज्ञान संसार में जो कहीं नहीं है वो बाबा ने दिया है। बहुत गहरी पालना की है। कुछ विदेशी आए, मैं उनसे कह रहा था कि बाबा ने विदेशियों की कितनी पालना की, ओम शांति भवन में 12 घंटे तो कितनी बार बैठे, 14 घंटे 16 घंटे बाबा ने विदेशियों की पालना की। और विदेशी मुझे देखो माताओं, और विदेशियों ने क्या किया, बाबा को छोड़ के चल दिए बड़े प्यार से। जो तब थे वो आज है ही नहीं। तो प्रभु पालना का रिटर्न देना ये भी बहुत बड़ी समझदारी है और बुद्धिमानी है। बाबा ने बहुत गुह्य ज्ञान हम सबको दिया है, सृष्टि के सारे रहस्य खोले हैं। तो दो ही बातें थी मुरली में, एक तो सदा खुश रहना है, सदा की बात है बाबा की, दूसरी बात बताओ किसने कैच की? मेरा बाबा में एक शब्द बोला, और बोलो और बोलो ठीक बोल रहे हैं आप ये सब, पर मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, एक शब्द बाबा का, बाबा से अपनापन, वो मेरा है उससे अपनापन हो जाए। इस बात पे सभी ध्यान दें, अपने क्या होते हैं पता है ना सबको, लौकिक संबंधों में सबको रोज का अनुभव है अपने क्या होते हैं। भले अब कलयुग में सारा खेल बिगड़ गया है, अपनों से गड़बड़ ज्यादा हो रही है, लेकिन अपनापन कितनी बड़ी चीज है। भगवान से अपनापन, वो मेरा है। और इसमें भी बहुत अच्छी बात, वो मेरा है तो उस पर मेरा अधिकार है। अपनेपन से बहुत सुखद फीलिंग होगी, भगवान से अपनापन और अधिकार से बोलो हाँ हम उसे यूज कर सकेंगे, उसकी शक्तियों का फायदा उठा सकेंगे, अपने जीवन को सरल और सफल कर सकेंगे, समस्याओं में बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी उसकी, खजानों से भी। तो जो कुछ उसका वो हमारा, हमें मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। मांगने वालों को तो वैसे बहुत थोड़ा सा मिलता है और अपनापन फील भी नहीं होगा। मांगते रहें कोई, लौकिक में भी बार बार मांगना पड़े तो अपनेपन की फीलिंग नहीं होगी। भगवान हमारा अपना है, इस फीलिंग को बहुत अच्छी तरह सबको बढ़ाना है। इसमें सभी चिंतन करेंगे, बाबा को जब देखें योग में भी तो अपनेपन से देखें, उसे याद भी करें, अपनेपन से याद करें और उससे नाते जोड़ लें। अपनापन बढ़ता है जब हमारे उससे नाते हो जाते हैं, नाता। कौन कौन से नाते हैं? बोलो, 8 नाते गिनाने हैं। 3 तो प्रसिद्ध हैं, पहले उनका वर्णन करो। बाप, टीचर, सदगुरु, और इसी में बाप के साथ माँ, 4 ये हो गए। अब आगे पढ़ो, सखा, साजन, साजन सजनी एक ही बात हो, सजनी नहीं होता वो, क्यों नहीं होता सजनी? मैं आत्मा सजनी है, शरीर का नाता नहीं है। कुमार सोचते हैं हम कुमार हैं, यही सोचना गलत है, हम आत्माएं हैं, सजनी हैं। सुना मीरा की कहानी? मीरा जब घर छोड़कर गई तो मथुरा पहुंची, एक कोई गोस्वामी उस समय का प्रसिद्ध महात्मा था, उसके आश्रम में जाके संदेश भेजा कि मीरा आई है। तो गोस्वामी जी ने अंदर से संदेश भिजवाया, यहाँ कोई पुरुष को रहना अलाउ नहीं है। मीरा को संदेश मिला बाहर, मीरा ने फिर संदेश भेजा कि मैंने तो आज तक सुना था कि पुरुष तो केवल एक ही है। कौन? उसमें श्री कृष्ण दिखाया, बाकी सब तो उसकी सजनियां हैं। तो गोस्वामी जी ये सुनते उनका नेत्र खुल गया, वो गलती हो गई मेरे से, कहा जाओ। तो बाबा साजन सजनी नहीं, और एक संबंध बचा बच्चा, बंधु सखा साजन बच्चा, माता पिता सदगुरु टीचर, 8 संबंध हैं ये बाबा के हमसे। मेरा है वो, देखो एक माँ को केवल एक बच्चा हो, बाकी कोई न बचा हो, माँ उस एक बच्चे में अपना संसार देखती है या नहीं? यही वो सब कुछ मेरा, यही उसी के प्यार में वो अपना जीवन व्यतीत कर सकती है ना सुखों से। ऐसे ही बाबा को अपना बना लें, और अपना बनाने के साथ संबंध जोड़ने के साथ एक एक संबंध को निभाना भी सीखना होगा। ऐसा नहीं बच्चा तो बना लिया लेकिन उसके लिए करेंगे कुछ नहीं। माताओं को एक हंसी की कहानी सुनाता हूँ, पहले भी सुनाई मैंने, यहाँ आपने नहीं सुनी है, सच्ची घटना है। एक माताओं की बड़ी भट्टी में सभी माताओं ने हाथ उठाया, बाबा को हम अपना बच्चा बनाते हैं आज से। बच्चा बनाया, ठीक है। अगले दिन माताएं आई, मैंने पूछा किस किस का बच्चा है बाबा, सब ने हाथ उठाया। मैंने पूछा किस किस ने रात को बच्चे को भोजन खिलाया था, अब माताएं एक दूसरे को देखें, कहा ये काम भी करना पड़ता था क्या? मैंने कहा तुम्हारा बच्चा तो रोते रोते भूखा ही सो गया होगा, गाली देते देते अच्छी मम्मी मिली है, हो गया नहीं? और एक दूसरी माता की अच्छी कहानी सुनो, उसके पति की मृत्यु हुई, बुजुर्ग माता, उसको 2 बच्चे, उसने अपने प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांटा, समझ गए तीसरा कौन? बाबा। 2 हिस्से बच्चों के एक एक, और तीसरा हिस्सा दिया बाबा को, अपने लिए भी नहीं रखा। देखो ऐसी माताओं पर बच्चा खुश हो जाएगा ना, और बच्चा तो है लेकिन दूंगी कुछ नहीं, तो बच्चा क्या करेगा? तो हमें संबंध जोड़ने के साथ निभाना भी पड़ेगा, और निभाना थोड़ा कठिन काम है, इसलिए साजन बनाना सबसे कठिन। क्यों बताओ? हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे कठिन काम साजन बनाना, इशारे में बता दूं, साजन फिर एक ही होगा, 2 नहीं, इसलिए कठिन है भाई। बना सकते हैं, अर्थात संपूर्ण प्यार एक को समर्पित करना पड़ेगा, दो को नहीं। इसलिए पहले सुंदर संकल्प हमारे तीन हैं, बाप टीचर सदगुरु। बाप से हमें क्या मिलती है? पालना और प्यार, अपनापन बहुत। तीनों चीजों पे ध्यान देंगे, अपनापन, प्यार और पालना। टीचर से संपूर्ण ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्यंत का, कर्मों का, आत्मा का, परमात्मा, मुक्ति, जीवन मुक्ति, माया, संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है। और सदगुरु से राह मिलती है। ज्ञान मिलना अलग बात है, राह, संपूर्ण बनने की राह, मुक्ति की राह। जीवन मुक्ति में ऊंच पद कैसे मिले सदगति में, इसकी राह, वरदान, शक्तियां, ये सब सदगुरु से। तो हम तीनों संबंधों का संपूर्ण फायदा उठाएंगे और हमें नशा भी हो जाए, कौन मेरा पिता है? बहुत बड़ा नशा है ये। लौकिक में किसी का पिता बहुत बड़ा आदमी हो तो बच्चों को भी बहुत नशा रहता है, कौन मेरा पिता है। और उसका जो प्यार है वो भी महसूस हो, वो हम रोज देखते हैं। बाबा कल भी आए तो प्यार हमने देखा, सब बच्चे सबको समान रूप से प्यार। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मैं सदाई बच्चों के साथ रहता हूँ, बच्चों के बिना मन ही नहीं लगेगा, ऐसा कहे। किसी को चार बच्चे हों, छोटे हों, और माँ बाप को कह दो बच्चों से अलग रहना है, क्या हाल होगा? माताएं सुनाओ, उदासी आ जाएगी फट से। जब तक बच्चों को न देखें, उनकी पालना न करें, उन्हें प्यार न दें, तब तक माँ का प्यार संतुष्ट नहीं होगा ना। बाबा भी जो प्यार का सागर है वो भी ऊपर से भी अपने बच्चों को रोज देखता है, ये हमें पता होना चाहिए। रोज देखता है, रोज उसकी पालना है, रोज उसका प्यार है, अपनी ओर से वो संपूर्ण मदद हमें करता है। हम उसे कैच न करें ये हमारी अपनी बात हुई, पर वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। जैसे माता पिता लौकिक में अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए, उन्हें सुखी देखने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं पता है ना सबको? कर्ज लेके भी पढ़ाएंगे। मुझे ऐसी ऐसी माताएं मिलती है, अपने सारे जेवर बेच दिए बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए, सारे जेवर बेच कर बच्चे को इंजीनियर बनाया, और बच्चे की शादी हुई तो बच्चे ने माँ से पूरा नाता तोड़ लिया। किसने तोड़ाया? मैं माताओं से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं। किसने तोड़ाया? बहू ने उसकी। तो माँ किससे ऊपर क्या बीतेगी बेचारी के? ये रोज की घटनाएं हैं, मुझे फोन आते हैं ऐसे। तब मुझे माताओं को संतुष्ट शांत करना पड़ता है, देखो तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, एक सच्ची माँ तुम हो जिसने अपना सब कुछ बेचकर बच्चे को इंजीनियर बनाया, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ, अब तुम खुश रहो कि मैंने अपना कार्य पूर्ण किया। अब वो जो नई माता आई है वो जाने, क्योंकि जो वो व्यवहार तुम्हारे साथ कर रही है उसके बच्चे वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी करेंगे। पूछता हूँ तुमने तो नहीं किया था? ये सत्य है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं हमें तैयार रहना चाहिए, वैसा ही व्यवहार हमें भी मिलता है। तो हमारा माता पिता हमारी बहुत केयर करता है, वो भी हमें सुखी बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, हम भरपूर हो जाएं, अपनी सारी ताकत लगाता है। 78-9 ईयर हो गए, 80 साल होने जा रहे हैं। वो ये भी कह सकता था 50 साल पढ़ा के सारा ज्ञान दे दिया है, पूरी छुट्टी मेरी अब, लेकिन उसने नहीं कहा, अब तक पालना कर रहा है। जबकि उसका रथ, ऐसा कहें उसकी गाड़ी पूरी बिगड़ चुकी है, पता है ना आपको, कल भी देख लिया। मैं तो पहले से ही जानता था 6 मास से कि अब के बाबा का क्या रुख रहेगा, क्योंकि दादी का ब्रेन बहुत वीक होता जा रहा है। इसके बाद भी बाबा आता है और सबको अपने प्यार की गुड फीलिंग देता है, तो बाप रूप में वो सब कुछ हमारे लिए करता रहता है। यहाँ आना तो एक बात, बाकी सारा समय तो ऊपर से न जाने क्या क्या करता होगा। आप सोचो, अव्यक्त मुरली में संडे को भी था, बाबा से पूछते थे ना कि ऊपर क्या करते हो सारा दिन, पूछते थे, हमारे आगे ही पूछा, दादियां पूछती थी, यही पूछा, बाबा सारा दिन क्या करते हो, आप बोर नहीं हो जाते ऊपर, न रात है न दिन है, न खाना है न पीना है, न स्नान करना है, क्या करते हो सारा दिन। बाबा ने उत्तर दिए थे ना, याद है, अभी संडे को ही तो। हाँ, एक एक की पालना करते हैं बाबा, बहुत कुछ। आप सच्चे दिल से उसको याद करो, बुलाओ, तुरंत आता है, तुरंत मदद करता है। इस बात को सभी जान लें और इसका फायदा उठाएं कि इस समय भगवान हमारे लिए है, इसलिए खुद ही उलझनों में रहें, खुद ही लड़ते रहें जीवन में, इसकी जरूरत नहीं। ये सुप्रीम सत्ता है, सबसे बड़ा, वो हमें निरंतर साथ दे रहा है। भगवान के साथ का फायदा उठाना सद्विवेक है ना, श्रेष्ठ विवेक की पहचान है। तो बाप है वो हमारा प्यार पालना दे रहा है, पालना बहुत कर रहा है, उसकी सूक्ष्म पालना को भी जान लें। प्यार भी पालना होती है, माँ बाप का प्यार बच्चे के लिए पालना है। जिन बच्चों को बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, उनका हाल मैंने तो बहुत देखा है, जीवन में सूखे रहते हैं, प्यार का अभाव है जीवन में, प्यार की तलाश रहती है, सदा तलाश रहती है, इसलिए कहीं भी भटक जाते हैं प्यार के पीछे। तो बाबा का प्यार हमारी बहुत बड़ी पालना है। बाबा के प्यार को कैसे महसूस करेंगे, एक ही विधि अपनाएंगे कल से, आज से, सोने समय से ही करें। बाबा ने मुझे जो कुछ दिया वो याद करके बाबा को शुक्रिया करें। याद करो क्या क्या दिया, आज रात को 10 बातें याद करना, बाबा ने मुझे क्या दिया, तब लगेगा बाबा बहुत प्यारा है, वो हमें बहुत प्यार करता है। किसी के उसने दुख हर लिए, किसी का जीवन बना दिया। देखो, अभी एक माता दिल्ली में मुझे मिली, 4 दिन पहले मैं आया दिल्ली, नया सत्कार भवन बना है, मुझे कहते थे यहाँ आओ, गए तो बहुत सुंदर बना है, दिल्ली पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास ही है, बिल्कुल 5 मिनट पैदल जा सकते हैं। तो एक भाई एक युगल दोनों थे, अभी ज्ञान में आए, बड़े खुशी से प्यार से मुझे देख रहे थे। मैंने पूछा परिचय, बस परिचय तो नहीं दिया, कहा देखो मेरी वो युगल बैठी है, उसका गले की तकलीफ कितने साल से थी, परेशान रहती थी, बाबा के बने ठीक हो गया फट से, चार्ज पानी पीने से केवल। तो याद करो, बाबा ने ठीक कर दिया, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, तो कितना प्यारा लगेगा बाबा। किसी के दुख हर लिए, किसी को नया जीवन ही दे दिया, कोई कोई जीवन में अकेले हो गए थे, कोई नहीं संसार में, बाबा ने उसे साथ देकर, अपनापन देकर जीवन जीना सिखा दिया। बहुत चीजें दी हैं बाबा ने, सद्विवेक दिया, दिव्य बुद्धि दी, पवित्र जीवन दिया है, कई गुण दिए हैं, कई अवगुण मिटाए, जिन विकारों के पीछे दुखी हो रहे थे वो छुड़ा दिए। याद करके उसको शुक्रिया करेंगे तो बहुत प्यार फील होगा, ये बहुत अच्छा तरीका है। बाबा हमारा सुप्रीम टीचर, टीचर हमारा टीचर से बहुत प्यार है, इसकी निशानी क्या होगी बोलो, पढ़ाई। पढ़ाई का अर्थ क्या होता है, कई लोग पढ़ाई का अर्थ नहीं समझते, वो क्या करते हैं, मुरली जेब में रखते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं। पढ़ाई पे ध्यान देना है, अच्छी बात है, बात खराब तो नहीं है, इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा मुरली पढ़े, लेकिन पढ़ाई माना, पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ना, केवल मुरली पढ़ना नहीं, मुरली के बाद योग, मुरली में जो धारणाएं आई वो, जो सेवा के लिए बाबा ने कहा वो, चारों सब्जेक्ट पे फुल ध्यान देना, ये है पढ़ाई में रुचि। जैसे स्टूडेंट बहुत होशियार कोई हो तो टीचर उन्हें बहुत प्यार करता है ऑटोमेटिकली, टीचर्स का ध्यान जाता है उन स्टूडेंट्स की ओर जो अच्छे हैं पढ़ने में, और ध्यान जाना प्यार देना माना सुख संवाद पे ध्यान दो। एक स्टूडेंट बहुत होशियार है पढ़ने में, बड़ा आज्ञाकारी है, टीचर का उसे बहुत प्यार रहता है, टीचर का प्यार माना नहीं, मैं सुख संवाद के लिए आपको कह रहा हूँ, उसकी बुद्धि का विकास होने लगेगा तेजी से, कि सुख संगति काम करेगी। टीचर के प्यार को जीतना माना बुद्धि का विकास करना। तो हमारा जो परम शिक्षक है उसकी पढ़ाई पे यदि हम ध्यान देंगे तो उसका प्यार हमारे विवेक को दिव्य बनाएगा। अब एक पढ़ाई पे पहली चीज यही है कि मुरली में रस, ये नहीं उधर मुरली चल रही हो और हम इधर ही हों, उधर मुरली चल रही हो और हम कुछ और कर रहे हों, या हम सोच रहे हैं रोज रोज क्या वही मुरली सुननी है, हम तो थक गए सुन सुन के, बाबा वही तो सुनाता रहता है, क्या इसमें। ये सब पढ़ाई में प्यार नहीं है, पढ़ाई बहुत गुह्य है, रहस्य खोले हैं बाबा ने बहुत सारे, उसमें पूरा ध्यान देना, उसमें इंटरेस्ट रखना, उस पढ़ाई की गुह्यता को जानना, ये परम शिक्षक से नाता है। होमवर्क भी सारा करना जो जो बाबा दे, और सदगुरु से वैसे ही नशा हो जाए। देखो पढ़ाई के बारे में भी यही है, भाई लोग जानते होंगे कई, भारत में कई आईआईटी के इंस्टीट्यूट हैं, पहले बहुत कम होते थे, दो तीन ही होते थे, अब पिछली सरकार ने 10 खोले थे, पता है ना भाइयों को, कईयों को पता होगा आईआईटी इंस्टीट्यूट, इसमें इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें जो पढ़ेगा उसकी नौकरी फाइनल में जाते ही तय निश्चित, वहीं आ जाते हैं कंपनी वाले लोग, लड़कों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक नशा रहता है, वो बताएंगे ना मैंने बीटेक किया, लेकिन साथ में ये बताएंगे आईआईटी से किया, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली से किया है, और हमें पढ़ाने वाला कौन, हमें भी इसका नशा हो जाए। तो सबसे बड़ी पढ़ाई, संसार की कोई भी पढ़ाई मनुष्य की बुद्धि को दिव्य नहीं बनाती, संसार की कोई भी पढ़ाई मनुष्य को सद्विवेक नहीं देती, कोई भी पढ़ाई समस्याओं का समाधान नहीं सिखाती, कोई भी पढ़ाई, और आगे सोचो, मनुष्य से देवता छोड़ो मनुष्य भी नहीं बनाती, ठीक है ना, ठीक है, देवता तो बाबा बना ही रहा है, केवल बाबा की पढ़ाई। तो माताएं बिना पढ़ी लिखी तो नहीं है, हैं माताएं बोलो, पढ़ी लिखी बिना पढ़ी लिखी माताएं कौन कौन बैठी है, अरे नहीं तुम बिना पढ़ी लिखी कहाँ हो, गोडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, भगवान पढ़ा रहा है, इसलिए ये संकल्प छोड़ दो, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं। अब देखो हमारी पढ़ाई में पीजी डिप्लोमा एमएससी ये सब हो रहा है ना, यही तो पढ़ाई है, उसको एक लैंग्वेज दे दी जाती है, उसको एक रूप दे दिया जाता है, उसमें लोग एमएससी कर रहे हैं। तो पढ़ाई बहुत सुंदर चीज होती है, इसको जीवन में संभालें, हमारी ये पढ़ाई हमारे विचारों को महान बना देती है, महान मनुष्यों को पैदा करने वाली पढ़ाई। सदगुरु, हमें ये भी नशा हो जाना चाहिए हमारा सदगुरु कौन है। देखो सदगुरुओं के बारे में एक चीज आपको कहूँ, पहले जो बड़े सन्यासी होते थे वो ज्यादा शिष्य नहीं बनाया करते थे, चार तीन, कोई दो ही, कोई एक ही। क्यों? क्योंकि अपने शिष्यों की संपूर्ण गारंटी उनको लेनी होती थी। ये तो बाद में लोभ लालची हो गए, लाखों शिष्य बनाने लगे, पैसा कमाने हो गया ना तरीका एक। गारंटी की तो कोई बात नहीं, कुछ भी खाओ पियो, गंदे रहो, मेरे शिष्य बन जाओ। शिष्य सदा, गुरु सदा शिष्य को साथ देने वाला, उसकी सुरक्षा करने वाला, उसको किधर भी इधर उधर कुमार्ग पर जाने नहीं देगा, वो थे सच्चे गुरु। और बाबा हमारा परम सदगुरु हमारी बहुत केयर करता है, हमें माया से युद्ध में विजयी बनाने के लिए शक्तियां देता है, भिन्न भिन्न विधियां बताता है, हमारे सिर पर छत्र छाया बनकर भी रहता है। हम इसे रियलाइज करें जरा, साथी बनकर रहता है वो हमारा। तो परम सदगुरु से भी अपना बहुत सुंदर नाता रहे। बाकी जो और संबंध हैं उनके बारे में आप विचार कर लेना। खुशी की बात बाबा हमेशा करता है, कल भी की ना बातें तो आएंगी, आगे जोड़ लो, जाएंगी। हर एक के जीवन में बातें तो रोज आती हैं, छोटी-छोटी बातें रोज, बड़ी बातें भी बीच बीच में आती हैं। लेकिन अगर हम संकल्प कर दें मुझे अपनी खुशी नहीं छोड़नी है, तो हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। कुछ बातें आज निकाल लें जो हमें खुश रहने में मदद करें। बोलो, कुछ ऐसी स्मृतियां, कुछ ऐसे महान विचार जो बातों के प्रभाव को हल्का कर दें। पांच, बोलो कैसे रहेंगे सदा खुश। एक चीज, फीलिंग नहीं, फीलिंग खुशी को नष्ट कर देती है, लंबा काल नष्ट कर देती है। बहनों में ज्यादा ही होती है, जरा कन्याओं में, और मुझे, मेरे पास कन्याएं आती हैं, हमें बहुत फीलिंग है, मुक्त होना चाहते हैं, तंग आ गए अपनी फीलिंग से, सवेरे बहन जी ने कुछ कह दिया, सारा दिन मूड ऑफ है, अब उसे मनाने में लगे हुए लोग, हम भी कहा इंतजार करते रहते कोई हमें मनाने आएगा, और नहीं आता तो हमारा और बुरा हाल हो जाता है। यहाँ तो कोई नहीं पूछता हमें, सब स्वार्थी हैं। जैसे बच्चे रोज जाए और चाहते हैं ना मम्मी मना ले, ना मनाए तो उसको बड़ा भारी लगता है। तो फीलिंग इफेक्ट, बातों का इफेक्ट हमारी खुशी को समाप्त करता है। कैसे बचेंगे इससे, इस चीज पे विशेष कार्य करना है सबको। भाइयों में भी जिसको फीलिंग आती हो वो इस पे विशेष कार्य करे। फुल होंगे तो फीलिंग नहीं आएगी, और पहला फुल होना है ज्ञान में, जिसे बाबा कहते हैं संपन्न बनो। ज्ञान में फुल, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी होती है, जो फीलिंग आती है, जो दूसरों की बातों को सीरियसली अंदर बैठा लेते हैं, इसने मुझे ये क्यों कहा, उसमें भी जब फीलिंग बहुत ज्यादा आती है, जब गलती न होने पर कोई कहे, ये बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है बहुतों के सामने, कि वैसे हमें कोई कुछ भी कहे ठीक है, लेकिन हमारी गलती नहीं और फिर बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हमारी बात, तब फीलिंग बहुत आती है, स्थिति बिगड़ जाती है। बोलो ऐसे में कैसे खुश रहेंगे। अब भगवान की इच्छा है, आज्ञा नहीं, इच्छा, मेरे सब बच्चे खुश रहें। लेकिन कुछ बच्चे दूसरों की खुशी छीनने में भी लगे रहते हैं, उनका क्या करेंगे? छीनने देंगे? वो भी तो चोर हो गए ना खुशी के। खुशी के खजानों को चुराने वाले भी तो बहुत हैं, माया नहीं, बाबा के बच्चे भी हैं। क्या करेंगे बोलो? आपके बारे में उल्टी सुलटी बातें करके आपको डांट डपट दिया गया, तुम ऐसे हो। बोलो बहने, बोलो भाइयों ने तो बोला, माताएं बोले। अपनी सत्यता में अटल रहना। हम सत्य हैं तो परेशान क्यों? अब देखो, हमारे पास बहुत अच्छी धारणाएं हैं, और आपके संबंधी आपको कहें तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, हम परेशान नहीं होते क्योंकि हमें पता है हम कैसे हैं। ठीक है ना, कॉमन बात। ज्ञान के बारे में भी लोग बोलते हैं, शास्त्रों का ज्ञान अच्छा है, तुमने छोड़ दिया। कहीं कुछ हो भी जाए ना परिवार में, तुम ब्रह्मा कुमारियों में चले गए, अपने हनुमान जी को छोड़ दिया, इसलिए ये हुआ है। ये बात बहुत आती है, अपनी देवी को छोड़ दिया, तुम्हारी संतोषी मार होती थी, कितना अच्छा रहता था। तो किसी को बुरा लगता है क्योंकि पता है सत्य तो बाबा ही है, सत्य तो उसका ही ज्ञान है, उनकी बातों को सुनते ही नहीं, जैसे तुम बोलते रहो। ऐसे ही अपनी सत्यता में विश्वास। जब हम सत्य हैं तो लोग हमें कहते रहे हम अपनी सत्यता को खोएं क्यों, तो खुशी जाएगी नहीं। अपनी सत्यता में स्वयं संशय तो दूसरों के कहने का प्रभाव जल्दी होता है, खुशी, खुशी के साथ उमंग उत्साह सब समाप्त हो जाता है। खुशी के साथ बहुत चीजें जुड़ी है ना, मनुष्य खुश है तो उसका विवेक ठीक से काम करता है, सुंदर विचार आते हैं बुद्धि में, उमंग रहता है कुछ करने का, महान लक्ष्य बनाया जाता है, और खुशी नहीं है तो ये सब नहीं होता, जीवन छोटा बनकर रह जाता है। इसलिए अपनी सत्यता को मजबूती से रखें, उसमें विश्वास हो। दूसरी बात, समस्याएं आ जाती हैं, समस्याएं आती हैं, उसको ठीक से समझना। देखो एक सच्ची बात सुनाऊं, एक माताजी ने फोन किया, मेरी लड़की ज्ञान में चलती थी, शादी हुई, 2 साल में ही पति मर गया। एक लड़की थी, 1 साल के बाद वो भी मर गई। ये बहन प्रोफेसर है, अब उसको कहते हैं उसकी माँ के ज्ञान लो, तुम्हारे जीवन में शांति हो, तो बहुत परेशान रहती और क्या कहती है, बाबा ने मेरा सब छीन लिया, मैं बाबा को बिल्कुल याद नहीं करूंगी, सारा छीन लिया बाबा ने मेरा। तो मुझे फोन किया, इसको क्या बताऊं मैं? मैंने कहा उसको अभी तो कुछ न बताओ, वो गर्म है, भगवान पे गर्म है ना अभी, लेकिन उसे बताना कि भगवान किसी का छीनता नहीं है, वो तो देता है। ये क्यों होता है मनुष्य के साथ? कर्मों के अनुसार। इसके पीछे जिम्मेदार हैं मनुष्य के अपने कर्म। बाबा को दोष देने से कुछ नहीं होगा, बाबा का कहीं दोष है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य को ये पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज भी कोई आई आत्मा, कहा बैठी उसकी कन्या, कहा इसमें कोई आत्मा आती है, तो कहा, मैंने कहा भाई क्या होता है, मैंने डिटेल पूछा, कहा हम उस आत्मा से बात भी करते हैं, उसने कहा है इसकी शादी करो, लेकिन शादी करने के बाद, वो ब्रह्मा कुमारी है, शादी करने के बाद मैं इसे तंग करूंगा। क्यों? सुन लो अभी, कहा पिछले जन्म में ये मेरा पति था, मैं इसकी पत्नी थी, इसने मुझे बहुत सताया है, मैं बदला लिए बिना छोड़ूंगा नहीं। देख लो, आज ही आई थी, परिवार था पूरा, अपनी लड़की को जो टीचर है सेंटर में छोटी, उसको लेकर आए थे कि इसको इविल सोल बहुत तंग कर रही है। तो ये सब कर्मों का खेल चल रहा है ना, कोई किसी को ऐसे ही तंग नहीं कर रहा है, ये सब साफ साफ दिखाई देता है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हमारे कर्म ही हैं। अब हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, तो स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करके खुश रखना है। और आगे चले, रोज सवेरे अच्छा योग अभ्यास हो जाए, अच्छे संकल्प उठ जाए, तो दिन बहुत खुशी में बीतेगा। सवेरे भी सो गए और मुरली में भी सो गए तो क्या होगा, सारा दिन खो गए। ये भी मुझे इसलिए याद आई, और माता आई आज ओपनली पूछा सबके बीच, मुझे बहुत नींद आती है, वैसे नींद नहीं आती, सवेरे योग में बैठूंगी सो जाऊंगी, मुरली सुनने जाऊंगी सो जाऊंगी, बाकी समय ठीक रहता है। ये सूक्ष्म विकर्मों का प्रभाव होता है, आत्माओं को कष्ट पहुंचाया है तो उनके बुरे वाइब्रेशंस अब उसको सुख नहीं लेने दे रहे हैं, ईश्वरीय सुख। इसलिए जीवन में सबको सुख देते रहना, सूक्ष्म विकर्मों से बचना, ये परम आवश्यक होता है। खुश वही नहीं है जिनके विकर्म ज्यादा हैं, बिल्कुल साफ दिखता है आजकल, वो लोग बहुत खुश हैं जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं और जिनके ऊपर वर्तमान का भी पापों का बोझ ज्यादा है, वर्तमान वो खुश नहीं रहते, उनके पाप कर्म उनको दुखी रखते हैं अंदर ही अंदर। तो पुण्यों का खाता बढ़ाते चले, और एक बात याद रखेंगे लास्ट, हम कल्प वृक्ष की जड़े हैं, हम खुश रहेंगे तो पूरे कल्प वृक्ष को अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे, और हम खुश नहीं हैं तो पूरे कल्प वृक्ष को निगेटिव एनर्जी जाती है। अपने को जिम्मेदार समझें, और मैंने कल क्लास में भी एक बात कही, आपको भी वो कहता हूँ, रोज सवेरे अपने को याद दिलाना, मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है, रोज याद दिलाना है, ये एक दिन से काम नहीं चलेगा, हम पूर्वज हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं, बाबा ने हमें सजाया है, हमारा श्रृंगार किया है, शक्तियां भरी हैं, अब महान कार्य करने के लिए। निर्भय भाई ने पूछा था ना कल कि बाबा आपने बहुत पालना दी, बच्चे रिटर्न कैसे दें, क्या उत्तर दे दिया बाबा ने, अब बच्चे बहुत बुद्धिमान है ना, माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया हो, बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुंचाया हो, शादी कराई हो, घर बना के दिया हो, अब बच्चों को इतना तो जानना चाहिए ना तुम्हें क्या करना है, अगर बच्चे ये भी न जाने सोच लो उन्हें क्या कहेंगे। तो भगवान ने हमारी बहुत पालना की है, हमारा ये जन्म अब महान कार्यों के लिए है, माताओं का ये जन्म आंसू बहाने के लिए नहीं, माताओं का ये जन्म छोटी मोटी बातों में समय बिताने के लिए नहीं, भाइयों का जन्म केवल काम करने के लिए नहीं, महान स्थिति के द्वारा चारों ओर की आत्माओं को मदद करने के लिए है। चिंतन करेंगे, सबके पास शक्तियां और खजाने हैं देने के लिए, साथ में अपने से ये भी पूछना, संसार को देने के लिए मेरे पास क्या है, सभी पूछना। माँ बाप भी सोचते हैं ना, बच्चों को देने के लिए हमारे पास क्या है। अब हमें सोचना है, अपने से पूछना है, संसार को देने के लिए मेरे पास क्या है। सुखों के भंडार हैं या शक्तियों के भंडार हैं, या पवित्रता के वाइब्रेशंस हैं, या दूसरों के विघ्नों को हरने के वरदान हैं, क्या क्या है मेरे पास संसार को देने के लिए। ठीक है, सुख भावनाएं हैं या ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत से जीवन बिताया है। तो समय आ गया है रिटर्न करने का, और समय भी हो गया। ओम शांति।